इमेजिन करिए कि किसी देश का राजा अपने खानसामे को खुद घूस दे रहा हो कि मेरी फेवरेट डिश की रेसिपी कहीं लीक ना हो। कितना शरीफ होगा वो राजा और कितना भ्रष्ट होगा वो खानसामा। खैर, गर्मियां हैं तो बातें ठंडी ठंडी हम कर ही सकते हैं। इसीलिए रेड पॉडकास्ट के फूड ट्रेल्स की आज के इस एपिसोड में बात करने जा रहा हूँ आइसक्रीम की। और जिस राजा का मेंशन मैंने किया वो थे इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम, जो अपने खानसामे को महीने के 500 पाउंड सिर्फ इसलिए देते थे कि भाई किसी को पता ना चल जाए कि मैं ये जो चाव से खा रहा हूँ वो बनता कैसे है। पता चल गया कैसे बनता है तो राजा और प्रजा में अंतर क्या रह जाएगा। हद है। ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और वो एक ऐसी एक्सक्लूसिव चीज थी जो इंग्लैंड के बाहर कोई नहीं खाता था या जानता था। असल में आइसक्रीम का जन्म हुआ था चीन में और वहां से इटली की ओर जाकर उसका विस्तार हुआ और पश्चिमी देशों में लोग इसे खाने लगे। आइसक्रीम का इतिहास बड़ा ही जटिल है, बड़ा विचित्र है और बड़ा कूल भी है। और आज के इस एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप सुन रहे हैं फूड ट्रेल्स मेरे यानी हेम के साथ और बात चल रही है आइसक्रीम की। हिमालय के उस पार एक विशालकाय देश जिसके गर्भ में इतने राज हैं कि शायद ही कहीं होंगे। उस देश में क्या होता है क्या नहीं होता वहां की गवर्नमेंट इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि बातें बाहर तक ना जा सके। चीन में ऐसा आज नहीं, सदियों से होता आ रहा है। आइसक्रीम हो या चाय का रहस्य, वहां के लोगों ने अच्छा बुरा जो भी बनाया खाया या दुनिया भर में फैलाया, दुनिया से हमेशा छुपा के रखा। इस देश में सालों पहले बनी थी आइसक्रीम और इटली के एक्सप्लोरर जिसका नाम था मार्को पोलो, जिसका नाम हो सकता है आपने भी कहीं सुना होगा, उसने पहली बार चीन में लोगों को आइसक्रीम खाते देखा। वो इस खाने की चीज से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसका प्रचार प्रसार अपने देश में किया। लोगों ने वहां भी आइसक्रीम बनाया और फिर इटली से बाकी के यूरोपीय देशों में फैलता चला गया आइसक्रीम। आज कौन सी ऐसी गली नहीं जहां आइसक्रीम बेचने वाले ठेले, स्टॉल्स या दुकानें नहीं। इतिहासकारों ने कई जगह कई दफे इस बात का जिक्र किया है कि फलाना राजा ने अपना कमरा ठंडा रखने के लिए पहाड़ों से बर्फ मंगवाई, ढिकाना राजा ने अपना कमरा ही बर्फ में बनवा डाला। बर्फ जो कि एक नेचुरल एलिमेंट है, नेचुरल तरीके से बनता है, पिघलता है, पानी हो जाता है और फिर से बर्फ बन जाता है, के बीच हम इंसानों ने अपना फायदा अपने मतलब का गुना गणित कर डाला। बेसिक साइंस है कि सॉलिड मटेरियल को एक टेम्परेचर पर पिघलाकर लिक्विड बनाया जाता है और लिक्विड को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रखा जाए तो वो सॉलिड हो जाता है। पिघला हुआ मोम और शीशा इसका उदाहरण है। वैसे ही जब हम पानी को 0 डिग्री से नीचे के तापमान पर ले जाएं, तो इसके एटम नजदीक आकर आपस में जुड़ने लगते हैं और यही पानी को सॉलिड बना देता है। यही बर्फ बनने का पहला स्टेप भी है। अब यही प्रोसेस अगर दूध के साथ किया जाए तो भी रिजल्ट वही होगा, क्योंकि दूध में भी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पानी ही है। यही दूध अगर फेंट कर जमा दिया जाए और फिर जमे हुए दूध को फिर से फेंट दिया जाए और फिर से जमाया जाए और यही प्रोसेस बार बार दोहराया जाए तो आपको मिलेगा वही आइसक्रीम वाला टेक्सचर। सीधा दूध को जमाया तो कुल्फी या आइसस्टिक, फेंट कर जमाया तो आइसक्रीम। ये बेसिक फंडा था आइसक्रीम बनाने का। एक महत्वपूर्ण बात जो आपने मिस कर दी होगी वो है दूध का फेंटना। फेंटने से दूध में बबल्स पैदा होते हैं। जैसे जैसे दूध जमता जाता है साथ ही बबल्स भी जमते जाते हैं। यही बबल्स में ट्रैप्ड हवा आइसक्रीम को वो टेक्सचर देती है, वो स्मूथनेस देती है जिसके हम सब दीवाने हैं। एक स्कूप उठाया और जीभ पर रखा, लेकिन कभी गौर किया कि जितना मैटर उठाया था असल में पिघलने के बाद रियलाइज होता है कि उतना वो था ही नहीं। वो इसी कारण होता है कि आइसक्रीम में बने बबल्स में ट्रैप्ड हवा हमारे मुंह के टेम्परेचर में फटाक से फूट जाते हैं और वो हवा रिलीज हो जाती है, ओवरऑल वॉल्यूम को घटा जाती है। बचपन में जब फ्रिज का चलन बस आया ही था और हमें आइसक्रीम बनाना और खाने का शऊर तक नहीं था, तो बस चीनी पानी का घोल हम आइसक्रीम वाले सांचे में डालकर जमा देते और बस जमाने के बाद उसे चूस चूस कर कूल बनते थे। आई एम श्योर आप सबने भी गर्मियों की छुट्टियों में ऐसा किया होगा। फिर वो भोंपू वाला भी तो था, जब हम बच्चे इधर उधर से चिल्लर निकाल कर बस गेट पर लटक जाते थे और अगरबत्ती के खोल जैसे प्लास्टिक में जमा हुआ रंगीन पानी चूस कर अपनी अपनी जीभ का रंग एक दूसरे को दिखाते थे। फिर आइडियाज थोड़े ग्रेजुएट होते गए और बाजार से प्रीमिक्स लेकर आने लगे। बड़ी दीदी उसे पैन में गर्म करके 3-4 घंटे तक लंबा एक्सपेरिमेंट करने के बाद सांचे में जमा देती और पापा के डर से उसे रात में ना खाकर अगले दिन पापा के ऑफिस जाने के बाद दोपहर में माँ के सोने के बाद हम सब मिलकर खा जाते। गला खराब हो जाएगा कि धमकियों से बचना भी तो था। आप सुन रहे हैं फूड ट्रेल्स मेरे यानी हेम के साथ और आज बात हो रही है आइसक्रीम की। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @hemuhaina। आप मुझे अपना फीडबैक जरूर पहुंचाइए। अब बात हिंदुस्तान की और यहाँ वाली ओरिजिनल आइसक्रीम की। एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तान में रईसों का फेवरेट डेजर्ट दौलत की चाट के बारे में आपने सुना होगा। अच्छा, दूसरी तरफ से आते हैं तब समझाता हूँ। दूध को हल्की आंच पर गर्म करो, उसमें मिलाओ शक्कर, केसर और अब इसे मथनी से फेटो। ऊपर जो बबल्स बने उन्हें एक परात में लेकर इकट्ठा कर लो। इस लेयर को एक के बाद एक चढ़ाते जाओ और बबल्स वाले फेन वाले इस मलाई की लेयर को सर्दियों में चांदनी रात में छत पर ओस में एक महीन कपड़े के नीचे जमने दो। एक प्लेट में छोटे हिस्से को काट कर इसके ऊपर डालो पिस्ता, बादाम और काजू और सजा दो और लुत्फ लो दौलत की चाट या निमिज या मलाइयों का। जिसने नहीं खाया वो भी आंख बंद करके बता देगा कि ये और कुछ नहीं आइसक्रीम का ओरिजिनल स्टेंसिल है। जिसने खाया है वो ये जानता है कि हाँ, ये असल में आइसक्रीम ही है। बर्फ या फ्रिज का इस्तेमाल नहीं हुआ, नेचुरली दूध को जमाया गया और खाया गया। ये दौलत की चाट का जन्म हमारे हिंदुस्तान में हुआ था और वो भी 600-700 साल पहले। चाइना के आइसक्रीम बनाने से पहले, मुगलों के कुल्फी जमाने से पहले, यूरोपीय देशों के हमारी कॉपी करने से बहुत पहले। ऐसे ही नहीं मेरा देश महान का नारा लगता रहता भाइयों बहनों। समय समय पर लोग आते गए, कॉपी करके टेक्नोलॉजी घुसाते गए और अपने नाम का ठप्पा लगाते चले गए। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो निमिश, मलायो या दौलत की चाट असल में आइसक्रीम का पूर्वज ही है। पुरानी दिल्ली में आज भी मशहूर लखनऊ और अवध क्षेत्र में खास तौर पर आज भी खाई जाती है ये चाट। मुंह में ऐसे घुल जाती है जैसे पानी, मिठास और इतिहास का अनोखा सा संगम। अब बात हिंदुस्तान में जन्मे दौलत की चाट हो गई है तो हिंदुस्तान में ही जन्मे कुल्फी की कैसे ना हो। जलेबी के साथ कभी रबड़ी खाया है? रबड़ी बनती कैसे देखा है कभी बनते? बड़ा सिंपल है। ढेर सारे दूध को धीमी आंच में तब तक पकाते हैं जब तक उसका पानी सूख के टोटल 1/4 कंटेंट नहीं हो जाता। इसी में मिलाते हैं शक्कर और ड्राई फ्रूट्स, अगर मन हो तो, एल्स सिर्फ मीठे से भी काम चलाया जा सकता है। कभी कभी लोग बिना मीठे के भी रबड़ी बनाते हैं और वो भी ओरिजिनल है। लप लपा सा धीमी आंच में धीमे धीमे पका हुआ दूध। अब बस इस रबड़ी को मेटल के कोन में भरना है और बर्फ में गाड़ देना है। समय समय पर इसे रोटेट करना है और बस प्लेट में निकालो, लुत्फ उठाओ। इसी को कुल्फी कहते हैं दोस्तों। अब ये बेसिक तरीका, बेसिक फॉर्मेट है जो मैंने आपको बता दिया। इंग्रेडिएंट्स में फेर बदल करते जाइए और कुल्फी का ढंग रंग सब बदलता जाएगा। इसमें पिस्ता डालिए, काजू डालिए, बादाम डालिए, चेरी डालिए या फिर उबली हुई सेवइयां डालिए और कुल्फी के साथ फालूदा कहकर इसे खाइए। कुल्फी के साथ फालूदा का सिलसिला शुरू हुआ मुगल दरबार में, जब रबड़ी को बर्तनों में डालकर, सांचों में डालकर, बर्फ की बड़ी बड़ी ठिल्लियों में या मटकों में उन्हें बार बार घुमाकर जमाया गया। KULFI कुल्फी शब्द आता है पर्शियन वर्ड कुल्फी से, QULFI, जिसका मतलब होता है ढका हुआ बर्तन या ऊपर तक भरा होने के कारण ढका हुआ बर्तन। कुल्फी बेसिकली एक अपभ्रंश शब्द है। सालों साल भाषा में परिवर्तन को सही मानकर उसे एक्सेप्ट कर लेना, इसी को कहते हैं। मुगल दरबार में अक्सर रात के खाने के बाद इसे दरबारी खाया करते थे। ठंडा तो था ही ये, साथ ही मीठा भी, तो रेगुलर डेजर्ट के बदले थोड़ा फर्क भी आ गया और अनोखा तो खैर ये है ही। इसी में सेवइयां उबाल कर डाल दी गई क्योंकि मुस्लिम परस्त मुगल दरबार में हिंदुस्तान की कल्चर और मुगल तौर तरीकों का मिलन भी तो होना था। इसी तरह इजाद हुआ कुल्फी फालूदा का। दिल्ली और खास तौर पर पुरानी दिल्ली, पाकिस्तान के कुछ शहरों में बड़ी पॉपुलर है ये देसी आइसक्रीम का पूर्वज। और एक्चुअली आइसक्रीम से बेहतर होने के कारण लोगों के खाने का, उनकी जीवन शैली का हिस्सा भी है। इसमें दूध है, केसर है, पिस्ता है, बादाम है, इलायची है और काजू भी है। ऑल इन ऑल फ्लेवर के साथ पोषण भी, कंपेयर टू आइसक्रीम जो सिर्फ फ्लेवर और मार्केटिंग के दम पर दुनिया में छाया हुआ है। मैकडॉनल्ड्स के मेन्यू में सबसे सस्ता ऑप्शन आइसक्रीम से लेकर बास्किन रॉबिन्स की महंगी वाली स्कूप नेचुरल्स के फ्लेवरफुल ऑप्शन से अपने इंडिया के देसी ब्रांड्स जैसे अमूल, वाडीलाल तक आइसक्रीम हर जगह है। गर्मियों की छुट्टियों में टीवी पर बार बार लगातार आने वाला वो अमूल का एड याद है ना, चलो मिलकर चले वहाँ, रियल फल रियल आइसक्रीम है जहाँ। ना चाहते हुए भी जाने कितने माता पिता रात को गाड़ी निकालकर आइसक्रीम खाने चले जाते थे। बाय द वे, आइसक्रीम जो कि ठंडी होती है उसका मार्केट सिर्फ गर्मियों में नहीं बल्कि सर्दियों में भी उतना ही टाइट है। ये अजीब सा सिस्टम है लेकिन सच है। कपकपाती सर्दियों में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही शायद ठंड को ठंड। अपनी आइसक्रीम कहानी कभी मुझे भी सुनाइए, कोई अनोखा एक्सपीरियंस हो तो वो भी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @hemuhaina पर मुझे बता सकते हैं। आप सुन रहे थे फूड ट्रेल्स, मेरे यानी हेम के साथ। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा। और हाँ, बनाते रहिए, खाते रहिए और खिलाते रहिए।